Subress.
On demand. Follow Subress Radio on Twitter and Facebook now.
Okay, और अब चलिए प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो. मैं अंबर, मेरे सामने हैं डॉक्टर राजीव वाधवा जी, तो उनका स्वागत करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब एंड वेलकम बैक.
गुड मॉर्निंग अंबर जी, आपको भी, सभी सुनने वालों को भी.
कैसा रहा वीकेंड?
बहुत अच्छा.
चलिए ये रस्मी जुमला जो है इसे पूछने के बाद ही बातचीत शुरू की जाए.
जी
ओके. और आज जैसा कि हम जानते हैं दो दिन की छुट्टी के बाद आप लौट कर आए हैं. सभी लोग काम पर गए हैं और आप एक हफ्ते के गैप के बाद आए हैं.
जी.
तो छुट्टियां जो होती हैं, हमारी आपकी तो जो बात है वो छुट्टियों वाली है नहीं, लेकिन अब हॉलीडे सीजन शुरू होने वाला है.
जी.
बच्चों की स्कूल की छुट्टियां जुलाई में शुरू हो जाती हैं, अगस्त में खत्म होती हैं.
जी, जी.
और ऐसे में बहुत से पेरेंट्स छुट्टियां शुरू होने से दो तीन हफ्ते पहले भी अपने बच्चों को स्कूल से हटा लेते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर या बताकर जेन्युइनली कि हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए. तो छुट्टी जब लेता है इंसान, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कभी भी किसी हॉलीडे पे जाना हो, स्पेशली अब्रॉड जाना हो, तो वैक्सीनेशन जरूरी है, कुछ एक दवाएं जरूरी हैं, कुछ और बातें भी हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए.
जी.
तो एज अ पर्सन मुझे शायद सारी बातें ना याद हों, लेकिन आप एक जीपी हैं, एक डॉक्टर हैं, तो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे हमारे बहुत से श्रोता फायदा उठा सकते हैं. तो क्यों ना फिर हॉलीडे के बारे में ही आज ये बात करते करते, जैसा पिछले हफ्ते ही आप इशारा कर गए थे, तो शुरुआत करते हैं जहां से आपको लगे कि ये पहले होना चाहिए.
जी चम्बा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. छुट्टियां आने वाली हैं और स्कूल की छुट्टियों के दौरान जिनके छोटे बच्चे हैं उस दौरान वो हॉलीडे पे जाते हैं, लेकिन ट्रैवल जो है वो सिर्फ उसमें ही, छुट्टियों में ही नहीं होता. लोग पूरे साल ट्रैवल करते हैं. जिनके बच्चे नहीं है या छोटे नहीं है, उन्हें देखना नहीं होता कि कब जा सकते हैं, वो कभी भी प्लान कर लेते हैं. काम की वजह से भी लोग ट्रैवल बहुत करते हैं आजकल, और सिर्फ छुट्टियों के लिए ही नहीं है. तो किसी भी वजह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और यहां हमारा ट्रैवल करने से मतलब ट्रैवल अब्रॉड है, किसी दूसरी कंट्री में आप अगर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप यूके में हैं तो उतना हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि यहां पर तो सर्कमस्टांसेस, चाहे आप यहां लेस्टर में हैं, चाहे आप लंदन में है या एडिनबरो में है, सब कुछ सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. लेकिन अगर आप बाहर किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो बहुत ढेर सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. और ये कॉमन सेंस अप्रोच है काफी, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा प्लान करके चलना है. कई बार मजबूरी में फौरन छुट्टी पर, या छुट्टी पर तो कम, लेकिन किसी काम से अब्रॉड आपको ट्रैवल करना पड़ता है. लेकिन अधिकतर तो हम लोग प्लान करके ही चलते हैं. तो जब आप छुट्टियों का प्लान करें, जब आप टिकट बुक करना शुरू कर रहे हैं, जर्नीज बुक करना शुरू कर रहे हैं, उस समय आप ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि हेल्थ के ऊपर, आपकी सेफ्टी के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपको क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए. तो वो काफी ढेर सारी बातें हैं, बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, और हम लोग आराम से डिटेल में इसका जिक्र करेंगे. और मुझे लगता है कि आराम से दो वीक तो ये बातचीत चलेगी, ये हो सकता है तीसरे हफ्ते तक भी खिंच जाए. जब हम ट्रेवल हेल्थ की बात करते हैं तो अधिकतर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे कैसे इंजेक्शन कौन से लगवाने हैं, लेकिन सिर्फ इंजेक्शन की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. तो एक एक करके उनको लेते हैं. तो सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी रिसर्च और प्लानिंग आपको करनी चाहिए. आप इस दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ट्रैवलिंग बहुत सस्ती होती जा रही है, ट्रेन टिकट्स, प्लेन टिकट्स काफी सस्ते होते जा रहे हैं, तो लोग पहले से बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उन जगहों पर जाते हैं जहां पहले सोचते भी नहीं थे कभी जाने के लिए. तो ट्रैवल एक बहुत आम हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया है. किसी जमाने में बड़ा एक वो रोमांचक एडवेंचर होता था कि जी हम प्लेन पर कहीं जा रहे हैं, वो कभी लाइफ में एक दो बार ऐसा लोगों को मौका मिलता था, लेकिन अब ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है कि साल में कई बार लोग हॉलीडे पर या काम के लिए ट्रैवल करते हैं. तो जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं, पहले जिस भी देश में आप जा रहे हैं, इट्स वेरी इजी, आजकल हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं या कैटलॉग लाते हैं, कोई भी हॉलीडे देखते हैं और जो अच्छा लगता है, जिसकी फोटो अच्छी लगती है, जिसके प्राइजेस हमारी छुट्टी के हिसाब से कम होते हैं, जल्दी से उसको बुक कर देते हैं. करने से पहले थोड़ा सा आप देखें कि वो कौन सी जगह है, वहां पर क्या सुविधाएं हैं, آپ کو کیا پرابلمس ہیں، اگر آپ کو ہیلتھ کی کوئی پرابلم ہے، جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا ہیلتھ کا کیا انتظام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر آپ کسی کنٹری میں ٹریول بک کر رہے ہیں وہاں کے حالات آج کل کیسے ہیں. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی وار ہو رہی ہے یا ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں یا سول وار ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہے. تو یو کے گورنمنٹ کی فورن ٹریول ایڈوائز بائی کنٹری کر کے ایک ویب سائٹ ہے، تو آپ گوگل میں اگر ڈالیں فورن ٹریول ایڈوائز، اس میں پوری دنیا کی جتنی کنٹریز ہیں اے بی سی سے سب کا نام آ جائے گا. تو جس بھی دیش میں آپ جا رہے ہیں اس کے اوپر ٹک کر کے دیکھیں، اور اگر گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ایڈوائز ڈالی ہوئی ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. وہ بتائیں گے کہ یہ سیف ہے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، اور کافی جانکاری وہاں پر ہوگی. اسی طرح سے امریکہ کی سی آئی اے کی بھی ایک ورلڈ فیکٹ بک ہے، اس میں بھی وہاں پر کنٹری کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں، ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں کہ وہاں پر بسیں کیسی ہے، آنے جانے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا انتظام ہے، یہ سب کافی انفارمیشن ہوتی ہے. اگر آپ کسی نئی جگہ جا رہے ہیں تو اس کا ضرور آپ دھیان رکھیں. دوسری بہت ضروری چیز ہے ٹریول انشورنس، اور اس کا صرف ہیلتھ سے ہی نہیں بلکہ پورے آپ کی ٹرپ سے بہت بڑا لنک ہے. انشورنس سے آپ کی جو آپ کا جو سامان ہے، آپ کا بیگیج ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، اور آپ کی ہیلتھ، دونوں کا جو ہے کافی اس سے مدد ملتی ہے، خاص طور پر اگر آپ دور کہیں جا رہے ہیں تو. اگر آپ کو وہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس لیے کہ آپ کو کوئی آلریڈی کوئی میڈیکل پرابلم ہے جو وہاں جا کر بگڑ سکتی ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی نئی بیماری وہاں جا کر ہو جاتی ہے، تو جو کاسٹ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وہ کچھ کنٹریز میں بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے. خاص طور پر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، امریکہ وغیرہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اگر بل دینا پڑ جائے، اور جو کہ ہم لوگوں کو یو کے میں عادت نہیں ہے، کیونکہ ادھکتر ہم میں سے واسٹ میجورٹی جو ہے ادھکتر لوگ این ایچ ایس سے ہی اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، تو ہمیں عادت نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے اتنا پیسہ دینا پڑ جائے گا. میں پچھلے سال کینیڈا گیا تھا دو سال پہلے، اور مجھے دیکھ کر بڑا آشچر ہوا کہ وہ دوائیاں جو یہاں پر این ایچ ایس پر تو پرسکرپشن پر ملتی ہیں یا کیمسٹ سے بھی آپ خریدیں تو دو پاؤنڈ میں، ڈیڑھ پاؤنڈ میں مل جاتی ہیں، وہ وہاں پر وہی دوائیاں جب ہمیں خریدنی پڑی اور ہم نے کیمسٹ سے جا کر بنا پرسکرپشن کے اوور دا کاؤنٹر ہی خریدی، تو وہ بائیس بائیس تیئیس تیئیس پچیس پچیس ڈالر کے دوائیاں تھیں. اور میڈیکل میں نے مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں جا کر ہاسپٹل میں اگر دکھانا پڑا تو وہاں پر ہزار دو ہزار تین ہزار ڈالر تو بات کرتے کرتے ہی بل آ جاتا ہے، اور اگر ذرا سی پرابلم ہو تو کئی ہزار ڈالر میں بل بنتے ہیں. تو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کو جانتے نہیں ہیں، تو وہ کہیں گے پہلے پیمنٹ کریے تب آپ کا علاج ہوگا. تو کاسٹ کی جو یہ میڈیکل کاسٹ ہے یہ بہت ہائی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جیسے ہم نے کہا ہم لوگوں کو کیونکہ عادت نہیں ہے کہ ہمیں پیسہ بھی دینا پڑے گا اس کے لیے، تو ہمیں بڑا جھٹکا سا لگ سکتا ہے، شوق لگ سکتا ہے. اگر ہمیں وہاں سے کسی میڈیکل ریزن پر واپس آنا پڑے کہ طبیعت خراب ہے، آپ کو ہیلی کاپٹر سے یا کوئی اسپیشل پلین میں یا پلین میں سیٹ اپ گریڈ کر کے آپ کو، اگر آپ اکانومی کلاس میں نہیں آ سکتے ہیں، فرسٹ کلاس میں آپ کو آنا ہے، آپ کو ہی نہیں آپ کے ساتھ میں کوئی ہے، بچے ہیں یا آپ کے پریوار کے دوسرے لوگ جو آپ کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو لے کر آئیں گے، اور اس سب کا، اور اگر خاص طور پر آپ کے لیے کوئی اسپیشل پلین کرنا پڑا، ان سب چیزوں کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کئی لوگ شاید افورڈ نہ ہی کر پائیں.
جی
تو اس کا آپ پورا دھیان رکھیں. انشورنس کے لیے یہ بھی آپ دھیان رکھیں کہ جب آپ انشورنس کراتے ہیں تو انہیں پوری انفارمیشن دیں. جسٹ وہ آج کل بڑا آسان ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر کچھ بھی خرید لیتے ہیں، لیکن آپ پوری کوشش کریں کہ آپ ادھک سے ادھک انہیں انفارمیشن دیں، آپ انہیں بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور جو پالیسی کی لمیٹیشنز ہیں اس کی ڈیٹیل کو پڑھیں. کیونکہ اگر خاص طور پر اگر آپ جیسے ہمالیاز میں یا کہیں پر کوئی بہت اونچی پہاڑ پر چڑھنے جا رہے ہیں تو بہت سی انشورنس اس کو کور نہیں کرے گی. اگر آپ اسکینگ کرنے جا رہے ہیں تو عام انشورنس ادھکتر اس کو کور نہیں کرتی، آپ کو اس کے لیے الگ سے کور لینا پڑتا ہے. اگر یو کے میں آپ انشورنس خریدتے ہیں اور فورن آفس نے، گورنمنٹ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایڈوائز نہیں ہے، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر آپ پھر بھی جاتے ہیں تو انشورنس کمپنی ہو سکتا ہے آپ کو کور نہ کرے. اور اگر آپ وہاں جان بوجھ کر کوئی ایسے کام کرتے ہیں یا ایسا کوئی اسپورٹس لے کرتے ہیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ جو अनयूजुअल हार्म है और उसमें अगर फिर आपको चोट लग जाती है तो वो हो सकता है आपको उसका कवर देने से मना कर दें कि हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। खासतौर पर अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम है, जो अभी आपको अगर कोई बीमारी है तो वो आपको जरूर डिक्लेयर करनी है उनको। कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे। तो अगर आपको डायबिटीज है, आप उन्हें बता दें कि मुझे डायबिटीज है। अधिकतर वो उसके एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं लेंगे, लेकिन उनके रिकॉर्ड में रहेगा ताकि अगर डायबिटीज की वजह से वहां जाकर आपको किसी हॉस्पिटल की या किसी चीज की जरूरत होती है तो फिर वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमें पता नहीं था, आपने बताया नहीं, तो वो पेमेंट करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आप जरूर उन्हें बताएं कि कोई प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि हम ब्रेक की ओर जाएं, कि अगर आपके डॉक्टर ने या हॉस्पिटल कंसल्टेंट ने आपको मना किया है कि आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए और आपने अगर ट्रैवल किया है, तो अगर आपने मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट ट्रैवल किया है, तो इंश्योरेंस आपको मान के चलें कि अगर वहां कोई जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस फिर आपको कवर नहीं करेगी, उसके पैसे नहीं देंगे।
ओके, आपने डायबिटीज का जिक्र किया है तो ब्रेक की तरफ जाने से पहले ये सवाल कर ही लेती हूँ, क्योंकि एक सवाल पहुंचा है और इनका कहना है कि ये डायबिटिक हैं और इनको अक्सर जो है कभी कभार जो है जब ये खाना वाना नहीं ठीक से खाते, तो अब खाते या खाती वो नहीं पता, भाई साहब या बहन जी हैं, तो कभी कभार हल्का सा उनको डिजीनेस फील होता है, तो उसके चलते वो कह रहे हैं कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, बट उनका बेटा कह रहा है कि अकेले नहीं जाना। सो डू डायबिटिक्स हैव टू टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस?
जी बिल्कुल, अगर आपको खाना ना खाने से, टाइम पर खाना ना खाने से चक्कर आते हैं तो हो सकता है आपकी शुगर लो हो जाती हो, डिपेंड करता है कि आपकी क्या दवाइयां हैं। तो आप जरूर ट्रैवल करने से पहले अपने जीपी से, अपनी सर्जरी में आप जिसको भी दिखाते हैं, नर्स को या डॉक्टर को, तो उनसे जरूर सलाह ले लें। बाकी डायबिटीज को यस, काफी चीजें होती हैं और वो आगे हम जब स्पेशल कंडीशंस की इस हफ्ते या अगले हफ्ते बात करेंगे तो उसे डिटेल में हम करेंगे, लेकिन खास तौर पर आपके लिए अगर आपको खाना ना खाने से चक्कर आने लगते हैं तो आपको चाहे ट्रैवल करें या ना भी करें, आपको इस बारे में अपने जीपी से जरूर बात कर लेनी चाहिए।
ओके, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि इनका बेटा कह रहा है कि अकेले नहीं जाने देना है।
जी, बात तो अकेले और किसी के साथ जाने की नहीं है। तो बात यह है कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको पहले उसको मैनेज करना है, वो रिस्क कितना है ये पता करना है, क्यों हो रहा है, और उसको मैनेज करके फिर आप प्लान बनाएं अपना। जी
चलिए, आई होप कि आप भाई साहब या बहन जी जो भी हैं, क्योंकि आपने नाम नहीं लिखा और आपके मैसेज के साथ कोई तस्वीर भी नहीं है, तो उसके चलते मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि उम्मीद करती हूं आपने बात सुन ली होगी, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम आगे बढ़ते बढ़ते जो है आपके लिए और जानकारी भी लेकर हाजिर रहेंगे, लेकिन इस समय हमें दो काम करने हैं, और पहला काम जो करना है वो ये कि क्रिकेट अपडेट आपको दे दिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 अपडेट्स ब्रॉट टू यू ऑन सबर्स रेडियो।
चलिए क्रिकेट अपडेट में आपको आज का जो मैच खेला जा रहा है उसके बारे में बता दें। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, और ये मैच खेला जा रहा है साउथहैम्पटन में। ये 15वां मैच है, 15th मैच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एट साउथहैम्पटन, और ऐसे में जो टॉस है, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लेते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को मैदान में उतारा बल्लेबाजी के लिए, और साउथ अफ्रीका का जो स्कोर है 29 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स, एंड दैट्स द स्कोर इन 7.3 ओवर्स टू बी प्रिसाइज। सुनते रहिएगा आपका अपना सबरस रेडियो, हम आपके लिए लेकर आएंगे थोड़ी देर बाद अपडेट इन द नेक्स्ट आवर, लेकिन अब इस समय चलिए लौट कर आते हैं इस तरह फॉर प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो आपके अपने सबरस रेडियो पर। इसके अलावा डैप डिजिटल रेडियो, मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एज वेल, जहां कहीं भी आप हैं सुन सकते हैं कार्यक्रम। और इस समय हमारे सामने डॉक्टर राजीव वाधवा जी, बात कर रहे हैं आज हम छुट्टियों के बारे में। जी हाँ, छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, और छुट्टियों के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना है ये सारी जानकारी हम ले रहे हैं डॉक्टर साहब से। तो चलिए हम थोड़ी सी और बात करते हैं अब। तो डॉक्टर साहब, जहां बात को छोड़ा था वहीं से पिक कर लेते हैं।
जी अंबर जी, तो हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात कर रहे थे कि आप छुट्टियों के लिए या काम के लिए या किसी भी वजह से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रैवल इंश्योरेंस की हमने बात की कि आपको इंश्योरेंस के बिना बहुत बड़ा रिस्क होता है ट्रैवल करना, आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप इंश्योरेंस कवर लेके चलें। अगर आप यूरोप में कहीं जा रहे हैं तो यूरोप में एक दूसरा सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ईएचआईसी, यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। तो ये आप government.uk की वेबसाइट पर जाकर वहां पर ईएचआईसी या यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड सर्च करें, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे परिवार के लिए और फिर आपके घर पर वो कार्ड आ जाता है, जैसे एनएचएस कार्ड होता है उसी तरह से ये ईएचआईसी कार्ड होता है। तो अब ब्रेक्सिट का चक्कर आजकल चल रहा है, ब्रेक्सिट क्या होगा किसी को नहीं पता है, और ब्रेक्सिट हो भी जाता है या डील या नो डील जो भी होगा उसके बाद ईएचआईसी की क्या पोजीशन बनेगी इस यूरोपियन इंश्योरेंस की, वो भी किसी को नहीं पता है। लेकिन अभी तक जो आज की पोजीशन है उसमें तो यही है कि आप किसी भी ईईसी जो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया कंट्री है या स्विट्जरलैंड भी, उसमें स्विट्जरलैंड में आप जाते हैं तो वहां पर अगर आपको इलाज की जरूरत होती है तो आपको वहां पर इस ईएचआईसी के जरिए आप वहां के सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज जो है करा सकते हैं। और जो भी चाहे आपकी पुरानी कंडीशन हो, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो, या अगर आपको मैटरनिटी की भी केयर की जरूरत है, जो महिलाएं मां बनने वाली हैं अगर उनको भी किसी हेल्प की वहां जरूरत होती है तो वो वहां पर आप ले सकते हैं बिना कोई पेमेंट किए। तो ये उनका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, तो वहां के लोग जब यहां आते हैं तो वो एनएचएस का सिस्टम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आप मानकर चलें कि हर कंट्री में जितनी सुविधाएं और जितनी फ्री सर्विसेज एनएचएस में मिलती हैं उतनी हो सकता है जहां आप जा रहे हैं वहां ना मिले, लेकिन वहां पर जो भी हेल्थ, वहां के सिटीजन को जो भी हेल्थ सर्विस मिलती है, जितना कुछ भी फ्री होता है उनके लिए अनपेड, वही आपको भी मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको उसमें भी कुछ पैसा देना पड़े। तो यही कहा जाता है कि आप अगर यूरोप जा रहे हैं या जाते रहते हैं तो ये ईएचआईसी कार्ड बनवा लें, कई साल चलता है ये, एक बार अगर आप बनवा लेते हैं तो, और फिर आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल स्कीइंग करने जा रहे हैं, यूरोप अक्सर लोग छुट्टियों में स्कीइंग करने जाते हैं और वहां पर स्की से जुड़ी हुई अगर कोई इंजरी या चोट वगैरह होती है या वहां से वापस आपको लाना पड़ता है हेल्थ ग्राउंड पर, तो वो ये ईएचआईसी कवर नहीं करेगा, तो वो रूटीन चीजें। क्रूज अगर आप जा रहे हैं क्रूज पर, शिप पर, वो भी ईएचआईसी कार्ड आपको जो है कवर नहीं करता है, वो नहीं मानते हैं उसको। तो आपको जो है ईएचआईसी आपके पास हो तो अच्छा रहेगा और इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो। कई इंश्योरर्स हैं वो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आप अगर यूरोप जा रहे हैं तो आपके पास ईएचआईसी कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास वो कार्ड है तो वो उसमें आपको डिस्काउंट दे देते हैं, या जो फर्स्ट जो एक्सेस जो होती है पहले 50 या 100 पाउंड जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है वो अगर छोड़ भी देते हैं अगर आपके पास ये कार्ड है। यूरोप में अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें वहां पर इमरजेंसी कोई पड़ती है तो 999 नंबर नहीं है वहां पर, 112 उनका इमरजेंसी नंबर है, तो वो आप नोट करके लिख कर ले जाएं, ध्यान रखें। वैसे एक बात आपको बताऊं जो शायद लोगों को ना पता हो, यूके में भी 112 इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहां पर भी अगर आप 999 की जगह 112 भी मिलाते हैं तो भी वो काम करेगा। तो ये रेसिप्रोकल हेल्थ अरेंजमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं, कुछ और देश हैं जहां पर रेसिप्रोकल हेल्थ ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने वहां की सरकार के साथ किया हुआ है, तो वो आपको कम कॉस्ट देनी पड़ सकती है या कई केसों में फ्री भी हो सकता है। लेकिन ये मान के चलें कि जितनी सुविधाएं एनएचएस पर मिलती हैं उतनी दुनिया के शायद किसी बहुत कम देशों में मिलती हो, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको हर चीज मिलेगी। तो ये आप चेक करके जाएं कि वहां पर क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, आप जहां जा रहे हैं वहां का थोड़ा सा रिसर्च करें, वहां के बारे में पता करें कि वहां हेल्थ सर्विस का क्या सिस्टम है, अगर वहां पर हम बीमार होते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो क्या सिस्टम है, उसकी पूरी जानकारी लेकर जाएं। एक और चीज जो हेल्थ से तो उतनी जुड़ी हुई नहीं है लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग उसके चक्कर में काफी उसकी वजह से काफी परेशान होते हैं, एक तो ये पासपोर्ट और वीजा। मैंने कई बार देखा है कि वो पासपोर्ट वीजा पहले तो अप्लाई नहीं किया या एकदम से इमरजेंसी में जाना पड़ गया या काफी देर तक छोड़ दिया तो पासपोर्ट नहीं है या वीजा नहीं है। एयरपोर्ट पर अगर आपके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है तो आपको कई बार जाने नहीं देंगे। दूसरा कॉमन सेंस इसमें एक टिप ये भी है कि आपके जितने पेपर वर्क हैं, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके आप फ्रंट पेज की फोटोज जहां पर सब डिटेल्स हैं उसकी फोटो ले लें और फिर उसको अपना सिर्फ अपने पास बल्कि अपने परिवार के दूसरे लोगों के पास भी या प्रिंट कर घर पर एक कॉपी रखें। पहले तो हम लोग वो पूरा इमरजेंसी वाला एक लिफाफा सा बनाकर रखते थे जिसमें सारे हमारे क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक वगैरह के डिटेल, वो एक उसके 3-4 फोटो कॉपी बना के हम लोग रखते थे। लेकिन आजकल ये स्मार्टफोन्स की वजह से आसान हो गया है, तो आप उसको सारा कुछ रिकॉर्ड कर लें और फिर उसको टेक्स्ट से या व्हाट्सएप से या ईमेल से आप अपने परिवार के 4-5 लोगों को भेज सकते हैं ताकि आपको अगर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में कोई ना कोई भी आपको बताने वाला हो कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है या आपका क्रेडिट कार्ड अगर कोई खो गया है तो उसका क्या नंबर है और क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड खो गया है तो अब हमें किस नंबर पर फोन करके उसे कैंसिल करना है तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपके पास भी आपके फोन पर है और अगर आपका फोन भी खो गया है तो और लोगों के पास है जिनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस की कुछ चीजें हैं। दूसरी और बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी की, हेल्थ के इंडिविजुअल टॉपिक्स की तरफ धीरे धीरे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हम लोग जब भी जाने की बात करते हैं किसी भी दूसरे देश में तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा इंजेक्शन कौन से लगवाने हैं, वहां इन्फेक्शन क्या हो जाएंगे हमको, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इन सब चीजों की, मलेरिया, इन सब चीजों की हम बात करते हैं और फिर हम अक्सर खासतौर पर इंश्योरेंस के लोग बात करते हैं कि वहां पर आपको हाई रिस्क स्पोर्ट, आप वहां बंजी जंपिंग करेंगे कि प्लेन से जंप करेंगे या किसी पहाड़ पर चढ़ेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो उसकी बातें तो हम बहुत करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा ट्रैवलर्स को है वो ना किसी इन्फेक्शन से, ना किसी बीमारी से है, ना किसी पहाड़ पर चढ़ने या प्लेन से जंप करने पर है, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। तो पूरी दुनिया में ट्रैवलर्स में जो नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है एंड इंजरी है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। तो आप जिन कंट्रीज में जाते हैं वहां पर थोड़ा ध्यान रखें, खासतौर पर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां रूल्स और रेगुलेशंस उतने नहीं हैं वहां पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां जब आप जर्नी कर रहे हैं तो आप सोच कर देख कर चलें। हम लोग देखते हैं न्यूज पर, फिल्मों में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते हैं, वहां भी होते हैं, लेकिन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर रोड शायद उतनी अच्छी नहीं है और गाड़ियों की मेंटेनेंस जैसे यहां पर होता है कि MOT होनी है, गाड़ी की एकदम फिट कंडीशन में होनी चाहिए, वो वहां पर नहीं उतना होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का उतना ध्यान नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, बस है तो वो बस में के अंदर ही नहीं छत पर भी लोगों को बिठा सकते हैं। तो इसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह है। तो आप थोड़ा सा बहुत ध्यान रखें। और उसके बाद इन्हीं कंट्रीज में दूसरी प्रॉब्लम जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर रूल्स रेगुलेशंस उतना नहीं है वहां दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अब अगर एक्सीडेंट हो गया तो यूके की तरह नहीं है कि आपने 999 किया और देखते ही देखते वहां पर 5-6 पुलिस की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सब जल्दी से पहुंच जाएंगी। एम्बुलेंस का वहां ऐसा कोई फिक्स नंबर कहीं अधिकतर कंट्रीज में नहीं है कि आप फोन करें तो एम्बुलेंस आपके लिए आ जाए, और आए भी तो उसमें कितना टाइम लगेगा। हमने देखा है, इंडिया में जाता रहता हूं तो वहां पर एम्बुलेंस जा रही है और दिल्ली में ट्रैफिक जाम में कोई उनको रास्ता भी नहीं देता है, तो वो सायरन बजाए जा रहे हैं लेकिन वो धीरे धीरे ट्रैफिक के साथ ही चल रहे हैं, कोई उनके लिए रास्ता भी नहीं छोड़ता है। तो अगर आपको चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है या कोई कुछ और चीज होती है तो फिर आपको हॉस्पिटल में भी नहीं ले जाया जा सकता है उतनी जल्दी, और फिर हॉस्पिटल अगर आप चले भी जाते हैं तो आप कहां पर हैं, उसका आसपास कितनी दूर कोई हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, तो ये अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर वेरी करता है। तो जब भी आप जाएं तो इसका जरूर ध्यान रखें। और अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको पता है कि हॉस्पिटल बहुत दूर है और वहां पर सुविधाएं भी ऐसी नहीं है कि आपको थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी अगर जरूरत पड़ी तो आपको फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने हैं कि आपको चोट ना ही लगे। तो आप सीट बेल्ट लगाकर चलें अगर आप किसी व्हीकल में जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट का ध्यान रखें। अल्कोहल पीकर बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं, एक तो ये कि आप एक्सीडेंट का रिस्क एक नई कंट्री में नहीं लें, और दूसरे यूके में तो ये होता है या और कई कंट्रीज में कि लेवल होता है, अगर आपने अल्कोहल पीकर गाड़ी चला रहे हैं और पकड़े गए तो आपका ब्लड टेस्ट या ब्रेथ टेस्ट किया जाएगा और एक लेवल से ऊपर होगा तब आपको कहा जाएगा कि आप ओवर हैं। कई कंट्रीज में जरा सा भी लेवल होगा तो वो आपको पकड़ लिया जाएगा क्योंकि वो इलीगल है, तो उसका आप ध्यान रखें। अगर आप वहां जाकर कार रेंट ले कर रहे हैं तो आप अच्छी किसी जानी हुई कंपनी से लें, ऐसे ही किसी अननोन पर्सन से ना लें क्योंकि उस गाड़ी में पता नहीं कितनी मेंटेनेंस उसकी हुई है कि नहीं हुई है। और गाड़ी अगर आप लेते हैं वहां पर किराए पर तो उसके टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स वगैरह आप खुद चेक करें, उनके ऊपर डिपेंड ना करें। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पर आपको चलानी आती है कि नहीं, उनके रूल्स क्या हैं, लेफ्ट और राइट का चक्कर है वहां पर और दूसरे रेगुलेशंस क्या हैं, स्पीड लिमिट्स क्या हैं, ये सब आप ध्यान रखें। और अगर आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं अच्छे से इस कंट्री में गाड़ी चला लूंगा, मुझे पता है, तो आप खुद ना ही ड्राइव करें तो बेटर है।
वही एक बेहतर ऑप्शन लगता है क्योंकि जहां इतना पैसा खर्च किया है थोड़ा और सही।
जी जी तो और खासतौर पर अगर कंडीशंस बिल्कुल वहां फर्क हैं, वहां क्राइम ज्यादा है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, रास्तों में कोई साइंस नहीं है, तो आप ऐसी कंट्रीज में जाकर खुद ड्राइव वगैरह ना करें। बाइक्स और मोपेड्स को जरा ना ही लें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उनमें चोट ज्यादा लगने का रिस्क है वगैरह वगैरह। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये हेल्थ से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हैं, लेकिन अगर वहां कोई एक्सीडेंट होता है तो आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए ये जरूरी है। अल्कोहल और ड्रग्स की हम बात कर रहे थे, तो अगेन आप जब भी ड्रिंक करें तो मॉडरेशन में, अगर आप एंजॉय करते हैं अल्कोहल तो लें, लेकिन लिमिट के अंदर, और खासतौर पर ड्राइविंग करते समय तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप गर्म कंट्रीज में, हॉट प्लेस में जा रहे हैं, तो आप अगर ड्रिंक करते हैं तो मान के चलें कि अगर पानी की कमी शरीर में होती है खासतौर पर गर्म जगह में, तो आपको अल्कोहल का ज्यादा असर होता है, तो आप पानी वगैरह पीते रहें साथ में। प्यास लगती है तो प्यास लग रही है चलो एक बियर पीते हैं, ऐसा नहीं करें, पानी पिए अगर प्यास लग रही है तो अल्कोहल ना लें। स्विमिंग खास तौर पर अगर आप काफी अल्कोहल वगैरह ले चुके हैं तो स्विमिंग करते समय ध्यान रखें, ना सिर्फ पूल में बल्कि पूल में ही भी ध्यान रखें, लेकिन सी में या लेक में या किसी रिवर में अगर आप तैरने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और किसी भी कंट्री में जाकर, ड्रग्स तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर किसी आप दूसरी कंट्री में जाकर, आप हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ड्रग्स की वजह से लोग वहां पर, जो यहां पर उतनी प्रॉब्लम नहीं भी होती होगी तो दूसरी कंट्रीज में जाकर प्रॉब्लम हो जाती है। तो
जैसा आपने कहा ड्रग्स का, तो वो सिर्फ एक हेल्थ की ही नहीं बल्कि वो और भी,
जी बिल्कुल,
बहुत
पूरी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। जी जी, किसी अननोन कंट्री में जाकर या किसी दूसरी कंट्री में जाकर अगर ऐसा कोई रिस्क है कि आप वहां अरेस्ट हो जाएं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम ज्यादा खिंच जाती है, तो उसका आप पूरा ध्यान रखें। जी
चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं अब गोल्डन सॉन्ग के बाद, और गोल्डन सॉन्ग से पहले एक छोटी सी ब्रेक है, तो अगर आपके पास कोई प्रश्न हो इस गीत के दौरान अगर पहुंचा दिया तो आज ही जवाब देने की कोशिश की जाएगी, अगर ज्यादा लेट हो गए तो फिर आपको इंतजार करना होगा अगले हफ्ते तक का। तो मिलते हैं हम लोग गोल्डन सॉन्ग के बाद, मगर पहले बात हो रही है छुट्टियों की, और छुट्टियों के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ट्रैवल के दौरान, उसके बारे में बात हो रही है। तो लौट कर आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, तो डॉक्टर राजीव वाधवा जी मेरे सामने हैं, बात को फिर से वहीं से पिक करेंगे जहां छोड़ा था।
जी अंबर जी, तो हम लोग स्ट्रिक्टली हेल्थ की तो नहीं, लेकिन और सेफ्टी की और बातें कर रहे हैं, कॉमन सेंस अप्रोच अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह की बात कर रहे थे। क्लाइमेट की बात करते हैं, आपके आसपास जो है एनवायरमेंट है उसकी बात करते हैं, तो आप अगेन कहीं भी जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं, आजकल तो बहुत आसान है, गूगल पर और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट्स हैं जिस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप देख के जाएं कि जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं उनके क्या रिस्क हैं, उसके बारे में पढ़कर समझकर आप जाएं, अपने साथ इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे देशों में आपको जो यहां पर आदत है वो चीज नहीं होगी, थोड़ा अलग होगा, तो अगर आप यहां हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है रेगुलेशन इतना है कि कहीं भी आप जाते हैं तो आप मान के चलते हैं कि वहां पर सेफ ही होगा क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, लेकिन और कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। तो सी में खासतौर पर अगर आप स्विमिंग करने, हम लोग के अधिकतर हॉलीडेज कई बार सी के आसपास होते हैं, समुद्र के आसपास, तो अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं पानी में तो आप ध्यान रखें, वहां पर अगर कोई साइंस वगैरह लगे हैं कि वहां पर डेंजरस करंट्स आ रही हैं, धार है कोई, तो या वहां पर कोई ऐसी फिश हैं जिनसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डेंजरस या तो मरीन एनिमल्स हैं और छोटी फिश भी जो कि वैसे डेंजरस नहीं है लेकिन उनकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, जेली फिश हैं, कई तरह के बाइटिंग फिश हैं, स्नेल्स हैं, तो आप उसका पूरा ध्यान रखें, वहां पर पूछकर वहां के लोगों से तब पानी में जाएं। अगर कोई बीच सुनसान पड़ा है और वहां पर कोई नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेफ हो, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें, सी जो है, समुद्र जो है, स्विमिंग पूल नहीं है, धार का उसका पानी का बहाव चेंज होने में, वेव्स आने में, डेप्थ एकदम से चेंज होने में कोई टाइम नहीं लगता है, और देखते ही देखते एकदम से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं समुद्र में और काफी डेंजरस वो हो सकता है। आपको जितना तैरना आता है आप उतना ही तैरें, जोश में आकर आप आगे ही आगे ना बढ़ते जाएं, मान के चलें कि वापस भी आना है और वो भी मुश्किल हो सकता है। अकेले खासतौर पर सी में नहीं तैरना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हो तो कम से कम आपके साथ कोई आपकी मदद करने के लिए तो हो। डाइव अगर आप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो अननोन जगह पर जब तक वहां पर आपको पता ना हो कि ये सेफ है वहां पर जंप ना करें। कई बार हम देखते हैं बहुत साफ अच्छा सुंदर पानी है, ऊपर चट्टान से या पहाड़ी से हम कूद जाते हैं, लेकिन नीचे उसके क्या है उसका हमें पता नहीं होता है, तो उसकी बहुत चोटें देखी जाती हैं, बहुत एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं कि नीचे पत्थर हैं या नीचे कोई कूड़ा पड़ा है या कोई पुरानी नीचे डूबी हुई बोट पड़ी है, उससे जो लोग जाकर टकरा जाते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें, पानी में समुद्र में अगर आप हैं तो तैरते तैरते इस जगह ना चले जाएं जहां पर बोट्स चल रही हैं या लोग जेट स्की कर रहे हैं, तो उससे भी चोट लग सकती है। हैवी खाना खाने के बाद फौरन नहीं तैरना चाहिए, उसका आप ध्यान रखें। तो ये स्विमिंग के लिए थोड़ा था। रिवर्स में और लेक में खास तौर पर अगर आप जाते हैं तो बहुत ध्यान रखें, कई जगह पर लेक्स जो हैं, झील जो हैं या जो नदियां हैं या कैनाल्स हैं वो सेफ नहीं है, उनमें क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं कई जगहों पर, उनमें और दूसरे छोटे पैरासाइट्स ऐसे कीड़े हो सकते हैं जो आपकी को आपकी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। तो ये पानी की बात हुई। हीट और ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। हम लोग यहाँ यूके में जैसा मौसम है, ठंड और बारिश का मौसम होता है, तो हम लोग हॉलीडेज ढूंढते हैं तो हम चाहते हैं कि गर्म जगह हो, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, मॉडरेशन में ही होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गर्म वाली जगह पर आप जाते हैं तो उसमें छोटी प्रॉब्लम जैसे प्रिकली हीट जो है, सनबर्न, उससे लेकर फेंटिंग, क्रैम्प्स और हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो कई बार इतनी ज्यादा कि जानलेवा भी हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखें। खास तौर पर अगर बहुत गर्म है, जिसकी हम लोगों को इस देश में जो रहते हैं उनको उतनी आदत नहीं है, तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर वहां कोई बहुत स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज, ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा थकाने और पसीना बहाने वाली है और वहां हीट भी बहुत ज्यादा है, तो आपका असर, आपको उसका बहुत बुरा असर हो सकता है। हीट एग्जॉशन है, हीट स्ट्रोक है, उसमें सिरदर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, नौजिया होने लगता है, वॉमिटिंग से आने लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, और फिर जब पानी की कमी होने लगती है तो स्किन ड्राई हो जाती है, पूरी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, कोलैप्स आप कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें जान भी जा सकती है और फौरन वहां पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हो सकता है उनको ड्रिप वगैरह लगानी पड़े वगैरह वगैरह। बच्चे जो छोटे होते हैं वो बहुत तेजी से इसमें गर्मी में बीमार हो सकते हैं और एकदम से ही वो बिल्कुल एकदम चुपचाप हो जाते हैं या लेट से जाते हैं कि बिल्कुल जैसे उनमें जान ना हो, तो उसका आप ध्यान रखें। आप देख कर जाएं कि जहां आप जा रहे हैं वहां टेम्परेचर कैसा होता है, वहां पर आपके कपड़े अपने साथ जो ले जा रहे हैं उसका ध्यान रखें कि यहां यूके के जो हमारे मोटे कपड़े हैं ठंड के हिसाब से वो ले जाएं। दिन में जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप देखें कि आपको बाहर निकलना है या शेड में रहना है। पानी पीते रहें, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। ओवर हीटिंग जो है नहीं करें। अगर आप कोई ट्रैकिंग या वॉकिंग वगैरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने साथ सॉल्ट और पानी और एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह का पूरा इंतजाम अपने साथ आप लेकर जाएं और पानी खास तौर पर पीते रहें। अगर आप कोई बोट वगैरह लेकर जा रहे हैं, एक बार फिर पानी की तरफ आते हैं, सी की तरफ, तो अगर आप बोट या सी में या किसी कनाल में कोई बोट वगैरह लेकर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। कोई अगर आप नया काम कर रहे हैं तो किसी के साथ करें, सीखें पहले तब करें। ये भी ध्यान रखें कि आपको वहां पर अगर आप बहुत डीप सी में चले गए हैं कोई बोट वगैरह लेकर तो वहां पर दूसरी बोट से आपको डेंजर हो सकता है, क्योंकि आपको ठीक से चलाना नहीं आता है, वहां पर जो मरीन एनिमल्स, फिश वगैरह बड़ी वाली हैं उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब आपको ध्यान रखने की बात है। अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो स्नो और आइस में अगर आप जा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया, खासतौर पर स्कीइंग का अधिकतर इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, तो आप जरूर अपने इंश्योरेंस कवर में पहले चेक कर लें कि आप कवर्ड हैं कि नहीं, और अगर वहां पर आपको कोई चोट लगती है या कोई प्रॉब्लम होती है, हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर आपको जाना पड़ता है, तो वो फ्री नहीं होता है इमरजेंसी में भी, तो आपको हो सकता है उसकी कॉस्ट देनी पड़े, तो ये सब बातें आप पता करके जाएं। सेफ्टी की हमने पहले भी बात की, आप ध्यान रखें, हम लोगों को यूके में बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की आदत है और वो हम मानकर चलते हैं कि अगर यहाँ के हम किसी होटल में रह रहे हैं या यहाँ के किसी पार्क में जा रहे हैं तो वहां पर क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि दूसरी कंट्रीज में भी वही स्टैंडर्ड्स हों। मैं अपनी पर्सनल बात कभी करता नहीं हूं लेकिन यहां पर आपको करूंगा, मैं इंडिया एक बार गया था, वहां पर एक वाटर पार्क था, उसमें गया तो काफी ऊंची स्लाइड थी, ऊपर से आप आते हैं और नीचे स्विमिंग पूल में आकर गिरते हैं, तो वो जब मैं उसमें आकर गिरा तो उसमें पानी इतना कम था और ऊपर क्योंकि वो काफी स्लाइड बहुत हाई थी उनका पानी कम चल रहा था, यहां पर तो वो अलाउ नहीं करते स्टैंडर्ड से, लेकिन वहां पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो जब मैं नीचे आकर गिरा तो पानी इतना कम था कि सीधा मैं पूल की बॉटम में मेरा कंधा जाकर टकराया तो मेरा कंधा डिसलोकेट हो गया, मेरी क्लेविकल बोन जो पूरी चकनाचूर हो गई, कई टुकड़े हो गए उसके, सो जान सिर पर अगर लगती तो शायद जान पर भी जा सकती थी। तो वहां पर फिर जैसा मैंने पहले बताया, कोई मदद करने के लिए वहां पर भीड़ तो बहुत लगती है लेकिन मदद करने वाले नहीं, और जो हैं भी उन्हें कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है, वहां पर पूरे स्टाफ में कोई नहीं था जिसे कोई मेडिकल ट्रेनिंग हो, वो सब खड़े होकर देख रहे थे क्या हो रहा है और क्या करना है। फिर हमें अपनी गाड़ी बुलानी पड़ी, कोई एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं था, 3-4 घंटे बाद इतनी हड्डी टूटे हुए पेन में मैं हॉस्पिटल वहां पहुंचा और उसके बाद फिर मुझे वापस आने के लिए और मेरे साथ बच्चे थे जिनका मुझे ध्यान रखना था बजाय इसके कि वो मेरा ध्यान रखें, तो उसके लिए फिर मुझको टिकट अपनी फर्स्ट क्लास में करानी पड़ी थी क्योंकि मैं तो वैसे आ भी नहीं सकता था यहां पर और बच्चे साथ में, तो वो अगर इंश्योरेंस थी तो वो काफी पेमेंट वगैरह तो एटलीस्ट हो गई वरना वो सब मुझे अपनी जेब से भरना। तो एक जस्ट एक एग्जांपल है कि किस तरह से खासतौर पर उन जगहों पर जहां आप जाते रहते हैं, जैसे जो लोग इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ्रीका के देशों में या अमेरिका में अक्सर ट्रैवल करते हैं तो उन्हें लगता है वहां तो हम जाते रहते हैं, वहां तो कुछ नहीं है, लेकिन वहां भी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप इसका पूरा ध्यान रखें। तो जिस बिल्डिंग में भी आप रह रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, वहां ध्यान रखें, आप किसी होटल में हैं वहां स्विमिंग पूल है और आपको लगता है कि ये पानी तो साफ नहीं लग रहा है तो अपना करें स्विमिंग, उसमें अवॉइड करें उसको। अगर कोई वहां पर रेलिंग वगैरह है और वो आपको लग रहा है कि ये तो सेफ नहीं है तो हो सकता है वो सेफ ना हो, आप उस पर भरोसा ना करें, उस पर लीन ना करें। फायर एस्केप वगैरह अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग में है तो जरा देख लें कि कोई आग वाग लगने का खतरा हुआ तो फायर एस्केप कहां है, तो जस्ट ये कॉमन सेंस है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें आप कहां हैं और वहां क्या कर रहे हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ में, कई बार हम लोग जंगल सफारी वगैरह में खासतौर पर अफ्रीका में हम लोग जाते हैं तो वहां पर अगेन हेल्थ एंड सेफ्टी के उतने फीचर्स उतने नहीं हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जानवर वगैरह वहां पर काफी होते हैं, यूएसए में भी खासतौर पर क्योंकि वहां बड़े जंगल हैं, वहां पर बियर और दूसरे जानवर खुले घूमते हैं तो आप उसका ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाते हैं, बहुत से बीचेस हैं वहां पर जहां पर स्विमिंग सेफ नहीं है क्योंकि उसमें शार्क आ सकते हैं, क्रोकोडाइल्स आ सकते हैं। अफ्रीकन सफारी वगैरह में भी जानवरों से आपको काफी नुकसान हो सकता है तो उसका आप प्रिकॉशन लें, बहुत ज्यादा एडवेंचरस उतना ही हो जितने भी आपको कॉन्फिडेंट हो, ज्यादा ऐसी एक्टिविटी ना करें। किसी भी कंट्री में आप जाएं वहां पर कई बार छोटे जानवर भी जो जान के लिए वैसे खतरनाक नहीं है लेकिन जैसे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं या चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, मंकीज हैं, ये आपको काट सकते हैं तो उससे रेबीज हो सकती है जो कि यूके में बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग उसका कोई इंजेक्शन नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हमें चिंता नहीं होती। यहां पर अगर हमें किसी के यहां के कुत्ते ने काट लिया है, डॉग बाइट हुआ है, तो हमें ज्यादा ट्रीटमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती, बजाय इसके कि हम चोट का इलाज करें उसके अलावा हमें कोई इलाज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज में आप हैं तो आपको रेबीज वैक्सीनेशन वगैरह वहां पर जरूरत पड़ सकती है। स्नेक्स स्कॉर्पियंस वगैरह की भी हम बात करते हैं, सांप और बिच्छू वगैरह की, तो अगर आप ऐसे किसी हॉलिडे में जा रहे हैं वहां रिस्क है तो आप उसका ध्यान रखें। और जो छोटे जानवर भी हैं, कैटरपिलर्स जो हैं या स्पाइडर्स हैं, उनको भी आप छुए नहीं, उनसे दूर रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें उस चीज का। और जो हम लोग बड़े जानवरों की हमेशा बात करते हैं कि शेर हमें खा जाएगा या शार्क हमें खा जाएगी, लेकिन जो सबसे खतरनाक जानवर जो है जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती है वो मच्छर है, जिसकी वजह से मलेरिया और दूसरी बीमारियां फैलती हैं, तो मलेरिया और उसकी बातों के उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो मॉस्किटो प्रिवेंशन है उसके लिए आप बहुत अपना ध्यान रखें। तो ये जनरल सेफ्टी से संबंधित कॉमन सेंस की बातें थी अंबर जी। हेल्थ की अगर हम खासतौर पर बात करना शुरू करें तो हेल्थ में आपको अगर खुद जानकारी चाहिए तो आप जो बेस्ट वेबसाइट है जिसमें आपको सबसे अच्छी जानकारी मिलेगी उसका नाम है फिट फॉर ट्रैवल, तो वो आप गूगल में फिट फॉर ट्रैवल डालें, वो एनएचएस की वेबसाइट है और उसमें बहुत हर कंट्री के बारे में अलग अलग जानकारी दी हुई है कि वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हर बीमारी के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका आप पूरा ध्यान रखें। वैक्सीन्स के बारे में हम लोग पूरा एक सेक्शन करेंगे अगले हफ्ते, मुझे तो लगता है जितनी जानकारी हो सकता है हमें तीसरे हफ्ते तक भी जाना पड़े, तो वैक्सीन्स के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे कि आप कहां जाते हैं तो आपको क्या वैक्सीन लेनी चाहिए, तो आज शुरू नहीं करेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई इंजेक्शन लगने हैं तो आप अपने जीपी के साथ अपॉइंटमेंट कम से कम 2 से 3 महीने पहले के लिए बात करें। उसकी दो वजह है, एक कि जो ट्रैवल संबंधी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एनएचएस पर बहुत कम सर्विस ट्रैवल वैक्सीन की उपलब्ध है, अधिकतर सर्विस जो होती है ये एनएचएस पर नहीं होती है, प्राइवेट होती है, लेकिन जीपीज एज ए सर्विस उसको फिर भी प्रोवाइड करते हैं भले ही आपको इंजेक्शन के पैसे देने पड़े, कुछ इंजेक्शन के अधिकतर कहीं फ्री भी होते हैं जो एनएचएस पर आपको मिलते हैं, लेकिन चूंकि सर्विस की कोई पेमेंट वगैरह ज्यादा नहीं है तो इसके बहुत कम अपॉइंटमेंट्स होते हैं जीपी सर्जरीज में, तो आपको 2 से 3 महीने पहले आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। अगर आप इसको आखिर तक छोड़ेंगे तो हो सकता है कि फिर आपको वो अपॉइंटमेंट मिले ही ना, और फिर अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो जा रहा हूं मुझे तो अपॉइंटमेंट चाहिए ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो हो सकता है फिर आपको ना मिले और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर केमिस्ट हैं या और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्राइवेट जीपीज हैं जो कि फिर फीस लेकर वो इम्यूनाइजेशन वगैरह आपके लिए करते हैं, तो एक तो ये वजह है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता है, और दूसरा ये कि कुछ इंजेक्शन होते हैं जिनके कोर्सेज होते हैं तो आपको एक ही इंजेक्शन नहीं एक लगेगा फिर अगले महीने दूसरा भी लगना है, तो अगर आप उसको पूरा कोर्स करके जाना चाहते हैं तो आपको 2-3 महीने पहले से शुरू करना पड़ेगा। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपका कोई प्लान बन गया है तो आप 3 महीने पहले से अपने जीपी को बताएं कि आप जा रहे हैं और फिर आप नर्स के साथ अपॉइंटमेंट लें ताकि आपका वो पूरा इंतजाम किया जा सके।
चलिए अब आखिरी 1 मिनट जो रह गया है उसमें एक सवाल मैं अभी पूछ लेती हूं, लेकिन इसका पूरा जवाब तो अगले हफ्ते ही मिल पाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई न कोई हेल्थ इश्यू रहता है तो वो अपने साथ मेडिसिन ले जाना चाहते हैं, लेकिन जैसा पिछले कुछ समय से हम सुनते आ रहे हैं कि मेडिसिन जो हैं एयरपोर्ट पे कई बार हमने खुद भी देखा है कि वो दवा आगे नहीं ले जाने देते, तो व्हाट्स द बेस्ट वे कि लोग अपनी मेडिसिन साथ ले जा सके बजाय, क्योंकि अगर रास्ते में खुदा न खास्ता कुछ हो जाए।
जी नहीं, नहीं दवा तो लेकर जाना ही है उनको। तो उसमें कई चीजें होती हैं अंबर जी, तो डायबिटीज के लोगों के लिए तो हमने जब डायबिटीज की बात की थी तो उसमें नीडल्स वगैरह भी होती हैं, अगर डायबिटीज या और भी किसी वजह से आपको नीडल्स वगैरह लेकर जानी है तो फिर उसमें वो या तो आप अपने साथ एक जो अगर आपको रास्ते में ही लगानी है एक डोज का टाइम है तो आप अपने पास रखें या फिर उसको आप चेक इन बैग में डाल दें, और दूसरा कभी भी आप अगर कोई भी दवाई लेकर जा रहे हैं तो आप उसका प्रिस्क्रिप्शन की जो राइट साइड वाला जो कॉपी होती है या अपने केमिस्ट से या अपने डॉक्टर से आप ले सकते हैं वो फ्री, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती है। कई कंट्रीज में आपको या खासतौर पर अगर आपके पास बहुत ढेर सारी दवाई है तो वो आपसे एयरपोर्ट वाले एयरलाइन वाले कह सकते हैं कि आप प्रूफ दिखाइए, तो कई बार आपको डॉक्टर से लेटर लेके जाना पड़ सकता है कि ये मरीज हैं इनको ये मेडिकल कंडीशंस हैं इनको ये दवाइयां लेकर जानी है, खासतौर पर अगर वो बहुत सारी नीडल्स हैं या कोई और दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स हैं उसके लिए वो उसका वो एनएचएस सर्विस नहीं है, अगर आपके जीपी उसके लिए कोई फीस भी मांग सकते हैं कि इस लेटर का चार्जेस पड़ेंगे जो कि जायज है, तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। तो अगर आपको इसमें कोई भी शक है तो आप जहां जा रहे हैं उस कंट्री की वेबसाइट पर एनएचएस की वेबसाइट पर ट्रैवलिंग वेबसाइट पर आप जरूर चेक कर लें, और अगर कोई शक है तो आप अपने जीपी रिसेप्शन पर इंक्वायरी पूछ सकते हैं कि मेरे को कुछ करना है कि नहीं, तो वो आपको बता सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच, और बस इसके साथ ही वक्त भी जो है न्यूज की तरफ मुड़ने का हो चुका, सो थैंक यू सो मच कि आप आते हैं हर हफ्ते अपना कीमती समय निकालकर इतनी सारी जानकारी देते हैं, सो अ बिग थैंक्स टू यू एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू।
माय प्लेजर अंबर जी।
और अगर कुछ कहना है आप लोगों को, कोई सवाल डायरेक्ट डॉक्टर साहब से पूछना है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं health@sabrasradio.com। और इसके साथ ही अब हम इस बातचीत को यहां पर विराम देते हैं, और अपने श्रोताओं से अब मेरी मुलाकात तो होगी, हिंदी कहने वाली थी आवर्ली न्यूज के बाद, लेकिन डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते।